फिर अगली चीज क्या है कि जो अल्लाह का वली बन जाता है ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि उससे गलती नहीं होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। किसी का ये कहना कि आज के बाद मैं खुद वली हूं या मेरा कोई वली है जिसको मैं वलीउल्लाह समझता हूं तो उससे कोई गलती नहीं होती, तो ये जुल्म है कहना। इंसान का मतलब ही नसियान से और भूलने वाला शख्स है, तो जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनसे गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन उनका जमीर इतना रोशन होता है कि जो ही गलती होती है तो यतूबून मिन करीब। सूरह निसा के शुरू में ही दूसरे रुकू में आता है कि इन्नम तौबतु लिल्लज़ीन यतूबून मिन करीब। तौबा तो सिर्फ उनकी कबूल है कि जो गुनाह होने के फौरन बाद तौबा कर लेते हैं। वलई सत तौबतु, फिर ऊपर आगे तीन डिफरेंट सूरतें बताई गई कि उनकी तौबा कोई नहीं है, जो गुनाह भी करते रहते हैं फिर तौबा भी करते रहते हैं, या फिर तौबा को इतना डिले करते हैं कि मौत का फरिश्ता सामने आ जाता है तो फिर उस वक्त कहते हैं कि इन्नी तुबतुलान, तौबा का वक्त चला गया। गुनाह होंगे लेकिन वो अपने गुनाहों पे खुद को सजा देते हैं और वो फिर इस पे अल्लाह ताला के सामने आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो गया, अब आप देखें इसमें अकीदा भी आ गया, ऑलमोस्ट सभी कुछ आ गया ना, कि जिसको आप कहना चाहिए कि सहाबे कराम सारे ही वलीउल्लाह थे, लिख ले हर सहाबी वलीउल्लाह था, क्योंकि उसके अंदर इनमें से किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। अकीदा उनका पुख्ता, हक के रास्ते में वो सीसा पिलाई दीवारें थी, हक के रास्ते में मुश्किलात उन्होंने अपने सीनों पे खाई। हमें दर्द नहीं होती? कभी आप सोचें कि जब तीर चलते थे, तलवारें चलती थी, क्या दर्द नहीं होती थी? आप जंगे पढ़ के देखें, गजवे उहद का हालात आपको याद होंगे, अबू तलहा खुद को ढाल बना के अल्लाह के नबी के सामने खड़े हैं, तीर इधर लग रहा है इधर लग रहा है, पीछे अल्लाह के नबी को खड़ा किया हुआ, और हर दफा अल्लाह के नबी कहते हैं फिदा अम्मी वा उबी, अभी ए अबू तलहा तेरे पर मेरी माँ और मेरे बाप कुर्बान। कहा आज की जंग तो अबू तलहा की जंग थी, आप बताएं हाँ, आपको मुझे किसी को अपने ही बच्चे को बचाते हुए हाथ पे कुछ तीर लग जाए तो हाय मैं मर गई करके पीछे नहीं होंगे? वो नहीं पीछे होते थे। और एक ऐसे सहाबी थे कि जंग में जब उनकी ढाल टूट गई, ढाल समझते हैं कि जो दुश्मन के तीरों को रोकती थी, तो अपना हाथ आगे रख दिया। ये पागल लोग तो नहीं थे, कोई उनको जुनून तो नहीं था? दो आलम से करती है बेगाना दिल को जब चीज है लज्जत आशना, ये यकीन था। वो हक के रास्ते में अपने कंधे नहीं सुलझाते थे कि हाय मैं क्या करूं, मेरे बच्चे रोएंगे, नहीं मैं नहीं कर सकती, सॉरी, यस आई वॉन्ट टू डू दिस, बट मेरे घर में असल में आज वो मैंने बिरयानी बनानी और आपको तो उसका तो काम बड़ा लंबा है, तो ये नहीं बनेगी तो मेरे तो बच्चे खुश नहीं, तो प्लीज आप खुद चले जाए, मैं नहीं जा सकती, वो आज तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी है और वो करना है। आप देखिए, हमें तो अपने अपने उजर देख के भी शर्म नहीं आती। हम अगर अल्लाह के नबी के दौर में होते तो क्या हम वली होते? अपने आप से पूछिए। मैं सोचती हूँ कि जब गजवे बदर के किस्से आप पढ़ते हैं, आप चूंकि आप में से अक्सर स्टूडेंट है तो मैं ये मुश्किल दर्स कर रही हूँ, आम जगहों पर मैं इतना मुश्किल दर्स नहीं करती और ना इतना सख्त दर्स करती हूँ और ना ये मौजू लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी फिक्र है। अगर आप ये बातें सुने बगैर कुरान पढ़ के आगे चले गए तो कहीं इधर उधर ना भटक जाए। याद रखिए कि गजवे बदर जब हुई थी कितने लोग थे? 313 लोग थे जो आए थे वहां, और दुश्मन 1,000 था। कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था कि बस ठीक है, एक अल्लाह के नबी ने जनरल कॉल दे दी कि चलो भाई जाना है जंग के लिए, वही चल पड़े जिन्होंने बगैर सोचे चलना होता है, हर जगह देखेंगे जो होगा। छोड़ दीजिए इसको, तो वो कहते हैं ना ये तो दर्जे थे जिनके अल्लाह ने दे दिए, ये नसीब वाले लोग होते हैं जो पहली पुकार पे लब्बाई कह देते हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी जंग होगी और हमारा इतना मुकाम होगा कि अल्लाह आसमान से झांक के कह देगा कि अहले बदर आज के बाद जो मर्जी करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। यानी आपको आज कोई कहता इस दर्स में आ जाओ तो उसके बाद तुम जो मर्जी करो तुम जन्नती हो, तो मुझे बता सकते हैं इस घर में कितने लोग होते हैं? ये जो कोने बचे हैं, ये कोने छोड़िए, ये बाहर आपको मेरा वाला टेंट भी लगाते तो वो भी कम थे। अगर एक दफा मुझे और आपको भी कहता आज इस घर में आ जाओ और एक दर्स सुन लो, उसके बाद तुम पक्के जन्नती। हालांकि आज कोई फरिश्ता या नबी नहीं है जो हमें ये कहेगा, कोई कह ना दे ऐसा सोच भी ना ले, ये भी अकीदे की खराबी होगी, लेकिन हम कितने आने को तैयार थे। और वो बदर अचानक जंग थी और अल्लाह ने असल में देखना यही था कि कौन दिल से नेकी करते हैं। देखिए, अगर पहले फजाइल हर बात के बता दिए जाए ना तो नेकोबद सारे ही चल पड़ते हैं कि चलो है मुश्किल चलते हैं। बदर एक टेस्ट था कि कौन है जो बगैर नफे नुकसान के नेकियां करते हैं। कौन है जो पहले फजाइल पढ़ के आते हैं फिर नेकी करते हैं, कौन है जो पहले जन्नत के महल देखते हैं फिर नेकियां करते हैं, और कौन बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क इसके मिस्ताक है। चलिए वो तो हो गए थे खत्म, मैं नहीं उसके ऊपर बात करती, बस वही बात है जिनको अल्लाह ने ये मुकाम देना था उनको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में सहाबा रोते थे, आपको था जिन्होंने बदर में नहीं शिरकत की थी वो रोते थे, काश उस वक्त बदर की जंग की कॉल पे हम भी लब्बैक कहते, वी विल टेक इट सीरियस, हम भी इनको कोई संजीदगी से लेते कि ये भी कोई बड़ी बात है। लेकिन वो गुजर गया, पहली कॉल जो होती है ना नेकी की और हक की, उस पे जो आ जाता है ना वो आता है। देखिए आज भी जो हम मुसलमान होते हैं ना, किसी को कहते हैं मुसलमान हो जाओ तो फिर हम उसको 1000 साल लंबी हिस्ट्री सुनाते हैं मुसलमानों की और उनके ऊपर धाक बैठी हुई है। लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक और कहा कि लोगो इन्नी रसूलुल्लाह, उस वक्त अगर भी हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत जैद, ये 4-5 ने बगैर कुछ कहे सोचे कह दिया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज पूरी दुनिया का ईमान दूसरे पलड़े में डाल दें, उन 4-5 लोगों के ईमान का बराबर नहीं हो सकता। वजह क्या, उन्होंने वो क्रॉस एंड क्रॉन नहीं तोले, एफ्स एंड बर्ड्स, क्या मिलेगा अच्छा इसका क्या फायदा होगा, बस वो चल पड़े, वो हक के लिए आए थे, उनको तो ये पता भी नहीं था ये होगा। लेकिन बाद वाले फिर सोच सोच के आते हैं। मुझे किसी साथी की बात याद आ गई, किसी और शहर की बात है, यहाँ की नहीं है, तो वो कहती थी कि जब फर्स्ट कोर्स ऑफर हुआ था हमारे इस शहर में, तो जिन लोगों ने लब्बैक कहा था ना उनको तो नहीं पता था कि ये पूरा भी होना है कि नहीं, कुर्सी में इसका जगह भी नहीं पता नहीं है ही कुछ नहीं, बस शौक था, एक जोश था, पढ़ना पढ़ना रुल रुल के इधर से उधर करते गए। उन्होंने कहा कि अब अगला कोर्स जो होगा ना वो कभी उस दर्जे पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब सजी सजाई बिल्डिंग खड़ी है स्कूल की। हम जिस तरह वक्त आए थे पढ़ने, देखिए जब तरक्कियां और साथ वो एक तारीख, और जैसे आज भी किसी मुस्लिम स्कूल की आप हिस्ट्री पढ़े वो अपनी हिस्ट्री सुनाएंगे, हमने ये स्कूल 20 बच्चों से शुरू किया, घर के बैकयार्ड में किया, ऐसे ही होता है ना, फिर ये हुआ, फिर होते हुए फिर हम किसी इधर चले गए, अब माशाल्लाह अल्लाह ने हमें 400 बच्चे दे दिए। अब जो उस स्कूल में माँ बाप लाइने लगा के खड़े हैं कि हमारे बच्चे को दाखिला मिले, वो किस बेस पे, उनकी हिस्ट्री कि इसने ये वाकई, दे आर सक्सेसफुल पीपल, दे हैव प्लान, दे हैव दिस, तो जो पहले दिन वो 20 बच्चे ले आए होंगे उनका क्या बना होगा। हमने से ये कोशिश की थी पिछले 1-2 साल पहले कि बस एक स्कूल खोलना है तो क्या करें, जाहिर है कि जो बच्चे आएंगे उनको अपना 1 साल छुड़वाना पड़ेगा ना, अब दूसरे लोगों से क्या, और गवर्नमेंट को दिखाना था कि इतने बच्चे हैं जो आएंगे, तो कौन आए वहां अपने बच्चे लेके, आप जैसे स्टूडेंट्स के बच्चे ही आए थे। उन्होंने कहा हमारे बच्चे का 1 साल जाएगा, जाने दो हम शुरू तो करें स्कूल। तो बगैर अक्ल के सोचने वाले साबिकून अव्वलून होते हैं। फिर बाद में तो ओहद आई, ओहद जंग आपको तो क्यों हुई थी, ये उन जियालों और जोशीलों के कहने पर अल्लाह ने की जो कहते थे अल्लाह एक और मौका ला, अब हम करके दिखाते हैं तुम्हें। फिर ग़ज़वा खंदक पड़ी, यानी जंगों पे बात करेंगे तो फिर तो बात बड़ी इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि मौजू क्या चल रहा है कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किल सहते हैं वलीउल्लाह, ऐश कोच नहीं होते, चिल्ला कश नहीं होते, वो सिर्फ बैठ के रियासतें नहीं करते, वो अल्लाह अल्लाह के जिक्र करके नहीं सोचते कि दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, वो ये नहीं कहते बैठो पहले अभी मक्की दौर है पहले अपने नफ्स को सुधारो, वो चलते हैं, वो दुनिया में जहां हक का पैगाम पहुंचाना है, जहां उसकी जरूरत है उसके लिए फिर कुर्बानियां लेते हैं, फिर घरों में झगड़े होते हैं, फिर माशरे का ट्रेंड चेंज होता है, लोग कहते हैं बच्चे पालो, वो कहते हैं हम पहले सीख तो लें बच्चे पालने कैसे, वो कहते हैं शोहरों को खुश करो, वो कहते हैं पहले देख तो लें अच्छी बीवियां क्या होती हैं। तो हक के रास्ते वाले लोग जो ना वो सुस्त नहीं होते, वलीउल्लाह वो होगा जो प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह सबसे बड़ा वली इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा में आपने देखना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और पिछले द्वार में अगर देखना है तो वो हजरत इब्राहिम थे। बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी, बाप छोड़ दिया, बचपन में माँ बाप प्यारे होते हैं तो वो छोड़ दिए, जरा बड़े हों तो दोस्त और खानदान प्यारा होता है तो उसको छोड़ दिया, फिर बीवी छोड़ी, फिर बच्चा छोड़ा, बुढ़ापे में आके बच्चे की गर्दन पे छुरी रख दी। तो जब अल्लाह के रास्ते में अमली कोशिशों का वक्त आता है ना, उस वक्त अगर आप गायब हैं तो आप वलीउल्लाह नहीं है, सॉरी, और ना ऐसे शख्स को वलीउल्लाह कह सकती हैं। विलायत का ताल्लुक कुर्बानियों से है, ये लोगों के नाम के साथ वली कोई आप लगा दें या कोई आपके नाम के से लगा दें उसकी उसकी क्या डिग्री है। देखिए कोई अपने पास से डॉक्टर लिख के लगा ले तो उसकी कोई वैल्यू है, कोई खुद पुलिस की वर्दी पहनकर या फौजी का कोई टैग लगा ले तो है, जब तक गवर्नमेंट ना उसको साइन करे। जब तक अल्लाह आपको वलीउल्लाह नहीं बनाएगा आप नहीं बन सकते, और जिसको अल्लाह ने नहीं कहा कि ये वलीउल्लाह उसको आप वलीउल्लाह नहीं कह सकते। क्राइटेरियन आपके हाथ में अब कि कौन क्या कैसे क्या होगा। तकरीबन 11-12 सिम्टम्स आपको आज मिल गई हैं कि आपने खुद वलिया कभी बनना है, बनी है काश। मैं कहती हूँ आप सब वलीउल्लाह बने, पूरे शहर में आपके खुल जाए आस्ताने कि ये वलिया हैं और ये वलीउल्लाह हैं और ये जो भी है। लेकिन ये 12 क्राइटेरियंस में से गुजरिए तो फिर आप सब बिस्मिल्लाह करें, सबको इजाजत है वलीउल्लाह बनने की या वलियाउल्लाह बनने की। आगे चलते हैं कि जब कोई वली बन जाता है तो उसको मिलता क्या है। कुछ इशारे तो इसी में थे, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। पहली चीज यह कि उसके लिए दुनिया में खुशखबरियां हैं। फिर दूसरी चीज आयत 62 में सुन ली है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखिए वलीउल्लाह की जिंदगी डिप्रेशन फ्री जिंदगी होती है, टेंशन फ्री जिंदगी होती है, स्ट्रेस रिलीफ होता है उसका, वो हर वक्त परेशान नहीं रहता क्योंकि अल्लाह कह रहे ला खौफुन अलैहिम। अच्छा आप कहेंगे क्या मतलब है, वो बेहिस होते हैं या उनको कोई गम नहीं है? सब कुछ होता है, वो इसी दुनिया में रहते हैं, वो ट्रैफिक में भी फंसेंगे, उनके बच्चे भी बीमार होंगे, उनके शौहर गुस्सा भी करेंगे, उनके ससुराल के मूड भी खराब होंगे, लेकिन इस दिल से बाहर उनका बस एक बैरियर लगा होता है, ला खौफुन अलैहिम, जो मर्जी है लेकिन मेरे दिल पे इसका कोई गम नहीं। कूल माइंडेड, रिलैक्स्ड, खुश, सारी दुनिया परेशान है जंग लगने वाली, सारी दुनिया परेशान है, ये हो रहा है, कहते अच्छा सुना है हमने ये हो रहा है, होकर अल्लाह रहम करे, हम तो बड़े खुश अपने हाल में। उनका एक अपना क्राइटेरियन है, अल्लाह गम से बचा लेता है ऐसे दिल को। हत्ता कि मैं सोचती हूँ अक्सर ये ऐसी बातें जब हम नबियों के सहाबा की जिंदगी की पढ़ते हैं कि अल्लाह उनको इतना बेनियाज कर देता है कि मौत का भी गम नहीं रहता और वो फिर अपने काम करते हैं। फिर उसके बाद यानी गम नहीं, खौफ नहीं, खुशखबरियां कैसी होती हैं, कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में उनको अच्छे ख्वाब भी दिखा देता है। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया की एक तफसीर उलमा कराम ने की है और वो कहते हैं कि इससे मुराद सच्चे ख्वाब आना है। अल्लाह ख्वाबों के जरिए से फिर आपको कुछ दिखाएगा, कभी खुद को आप जन्नत में देख रहे हैं, आपको कोई अल्लाह अपनी नेमतों में कोई बहुत पानी दिखा रहा है, कहीं आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ना कुछ आपको जरूर उसमें से नजर आएगा। इसी में से फिर अगली चीज क्या होती है जो वली बन जाता है ना, करामत। अब करामत का लफ्ज हमारे यहाँ बहुत मारूफ है तो जरा करामत की भी हकीकत इसी टॉपिक में समझते हैं। देखिए करामत किसको कहते हैं, अब आप किसी के बारे में सोचें उसकी ये करामत है, तो पहले ये बताएं करामत होती क्या है, क्या रूट होगा करामत का? करम से। अल्लाह अल करीम है, इज्जत शर्फ और एजाज और इकराम को करामत कहते हैं। इसके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, एक होती है आम करामत, करामत आमा कह लीजिए। हर बंदे को अल्लाह ने बहुत सारी करामतें दी हैं, कौन सी बोलना, क्या ये करामत नहीं? ये जो मैं बोल रही हूँ कैसे बोल रही हूँ, आप जरा इस गोश्त के टुकड़े को तो देखिए जिसको लोग जुबान कहते हैं, और जरा कहिए बोले, आप ऐसे एक टुकड़ा बना के एक नकली जुबान रखे और कहें बोलो, बोलती है क्या? बोलना करामत नहीं है? सोचना, देखना, सुनना, सिर्फ इंसान अपने ऊपर गौरव फिक्र कर लेना तो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। मुझे एक प्रेजेंटेशन याद आ गया, अगर मुमकिन हुआ तो बाद में दिखा देंगे। स्कूल में टीचर था तो उसने बच्चों से सवाल किया कि ये बताओ कि दुनिया के 7 बड़े अजूबे कौन से हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप भी इस बात पे समझ गए होंगे जो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, ताजमहल है, नियाग्रा फॉल है, अहराम मिसर है, एफल टावर है। अच्छा वो जो बैठे हुए थे ना, तो बच्चों ने यही जवाब दिए तो वो टीचर बड़ा खुश था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 7 पूरे हो गए। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया तो उसने कहा कि नो, मेरी नजर में तो कुछ और है। उसने कहा क्या? फिर उसने यही जवाब दिया था जवाब को, तो उसने कहा कि मेरी नजर में सबसे बड़ा अजूबा क्या है, हेयरिंग, सुनना। कोई सोच सकता है ये कान है क्या? देखिए है क्या, सीधा भी नहीं, मुड़ा कुड़ा और सुनता। आप इस तरह की कोई चीज बनाइए और उसे कहिए कि वो सुने, सुनती है? फिर बोलना, फिर देखना, फिर आंसू बहना, फिर सूंघना। उसने कहा मेरी नजर में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये है, और इट्स ट्रू। और ये खूबियां इंसान को दी अल्लाह ने। फिर इसी तरह आप देखिए कि अंदर कितनी चीजें इंसान के, उसके अंदर जमीर है, यानी हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना, ये करामत है। एक डेफ एंड डल बच्चा पैदा हो जाता है, माँ सारी कोशिश कर ले और बाप सारी दौलत लगा दे ना, तो उस बच्चे के अंदर से कोई कमी नहीं दूर करा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये करामते हैं, और इन्हीं को यूज करेंगे तो अल्लाह को भी पाएंगे, इन्हीं को यूज करके इंसान दूसरी मखलूकात को फायदा दे सकता है। और इन्हीं को यूज करके आप दूसरों को नुकसान दे सकते हैं। हुआ आज क्या कि छू के दुनिया की चीजों ने तरक्की बहुत कर ली ना, जैसे ये माइक बोल रहा है तो आप वाह वाह कहेंगे, माशाल्लाह कितनी ऊंची आवाज इसकी हो गई। तो मेरा बोलना आपको इतना अहम नहीं लगेगा जितना इस माइक का बोलना लगेगा। बस अगर ये माइक बंद कर दूं तो बहुत सारे लोग उठ के बाद में कहेंगे आवाज इतनी क्लियर नहीं आई, तो मेरे से ज्यादा इसकी इज्जत हो गई ना। लेकिन चलिए माइक इससे भी बड़ा ले आए और मैं ना बोलूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह मेरी आवाज ही ले जाए, तो ये बोलेगा। तो ये है फर्क इस चीज का कि जब अल्लाह हमें कोई नेमत देता है, सलाहियत है ना, ये अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें स्किल्स दी हैं, इन स्किल्स को वलीउल्लाह जो है ना लोगों के फायदे में लगाते हैं। बात वैसे वो बोलते हैं तो बेतुक्का नहीं बोलते, जलाते नहीं लोगों को, गिबते नहीं करते, ताने नहीं देते, वो आंखों से इशारे कर करके दूसरों को टीज नहीं करते। यानी उनकी करामत क्या होती है कि वो चाहते क्या हैं कि हम अपनी सलाहियतों से लोगों को फायदा दे दें। सूरत रात में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वम ममा यनफउ नासु फयमकुस, और जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। और आप अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दें कि इस कुरान के सफर ने एक सोच तो आपको दी होगी, अमल उस पर आपने जब करना है जब करना है, लेकिन ये सोच तो मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि दी आपको, और वो क्या कि आपने नफा मंद बनना इंसानियत के लिए। कुरान तो बंदे को जो तड़प लगा देता है ना कि मेरी जिंदगी चार बच्चों में क्यों खो गई, और वो भी पता नहीं हमने उनको ठीक किया या हमने उनको बिगाड़ ही दिया, हमने उनको फायदा देना है कि नुकसान देना है। यानी इंसान को फिर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, फिर सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहती, इंसानियत के बच्चों की फिक्र है, सिर्फ अपने घरों की फिक्र नहीं होती बल्कि इंसानियत के घरों की फिक्र लग जाती है। तो लिहाजा खुद को बेकार जाया कर देना ये इंसान के हक में दुरुस्त नहीं है।